अरमान जी, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उन्हें शादी तक यहाँ रहने दीजिए। वैसे भी कल शादी हो जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। आस्था की बात सुनकर अरमान ने केवल सपाट लुक आस्था को दिया था और उसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। वहीं आस्था ने दादाजी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दादाजी ने तुरंत अपना हाथ खड़े कर दिए और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, आस्था बेटा, हम आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बात किसी भी कीमत पर नहीं मान सकते हैं। और उस औरत को मैं एक पल यहाँ नहीं रख सकता हूँ। उसके होश में आते ही मैं उसे यहाँ से भिजवा दूंगा। फिर दादाजी भी अपने कमरे में चले गए। अब आस्था बेचैन हो गई थी, क्योंकि वो अरमान के दिल का दर्द अच्छी तरह से समझ रही थी और वो इस तरह से अरमान को बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए आस्था ने अब जल्दी ही अरमान को मनाने का फैसला किया कि अगर वो अरमान को मना लेती है तो फिर दादाजी भी मना नहीं कर पाएंगे। वहीं नानी माँ ने आस्था से कहा था, बेटा सोच ले, जो कुछ तू कर रही है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि जो औरत अपने सगे बेटे की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती है। तब आस्था ने नानी माँ से कहा, हम जानते हैं नानी माँ, लेकिन इस वक्त अरमान जी के दिल से उस औरत की नफ़रत निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी इंसान के दिल में नफ़रत होती है, किसी को बर्बाद करने की चाहत होती है, तो वो इंसान भी कभी सुकून से नहीं जी पाता है। और हम अपने पति की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी उनके साथ सुकून से जीना चाहते हैं। ऐसा बोलकर आस्था जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी। और जैसे ही वो कमरे में गई, उसने कमरे का हाल देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। अरमान उस वक्त बेहद फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और सारा गुस्सा उसने अपने कमरे के ही एक से बढ़कर एक महंगे सामान पर उतार रहा था। लेकिन आस्था अपना थूक निगलते हुए अरमान की तरफ बढ़ने लगी। इन सब चक्कर में अरमान के हाथ से ब्लड भी निकलने लगा था, इसीलिए आस्था फटाफट से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठ गई थी और अरमान का ब्लड क्लीन करने के बाद धीरे धीरे वो अरमान से बातें करने लगी। अरमान जी, आपको पता है, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार रहे और वो सिर्फ हमारे लिए प्यार रहे, लेकिन आपके दिल के एक कोने में दर्द है, दुख है, नफरत है। हम चाहते हैं कि वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब सुन रहे हैं ना हमारी बात? ऐसा बोलकर आस्था अरमान को समझाने लगी और उसके आगे बोलती हैं, अरमान जी, हम जानते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा बचपन जिया है। इनफैक्ट ऐसा बचपन तो कभी किसी दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अरमान जी, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, कल को जब आपके बच्चे होंगे तो क्या आप अपने दिल की नफ़रत और अपने दिल के दर्द के साथ उन बच्चों को फेस कर लेंगे? नहीं नहीं अरमान जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल की नफ़रत को, अपने दिल के दर्द को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और एक बार सब कुछ भूलकर वसुंधरा जी को माफ़ कर दें। और वो सिर्फ आपकी शादी तो देखना चाहती हैं, उन्हें शादी देखने दें और उसके बाद उन्हें यहाँ से विदा करेंगे। आस्था की बात अरमान केवल सुनता रहा, लेकिन उसने आस्था से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था जो कह रही थी वो सही भी कह रही थी। अरमान का दिल आस्था की बातें मानने को कर रहा था, लेकिन उसकी नफ़रत, उसका दर्द उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। और वो बिना इमोशंस के बोलता है, चाहे तुम कुछ भी बोलो आस्था, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। अरमान सिंघानिया उस औरत को अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता है। ये बोलकर अरमान आस्था को देखने लगा था, लेकिन तभी आस्था ने अरमान के हाथ पर हाथ रखकर कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी शादी अटेंड करे, बस उसके बाद हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और हम ये आपसे मांग रहे हैं। वैसे भी आपने हमें आज तक कोई तोहफा नहीं दिया है, हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी ये बात मानकर हमें ये तोहफा दे दीजिए। आस्था की बात सुनकर अरमान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। तभी आस्था ने अपनी गोरी बाहों को अरमान के गले में डालकर कहा, हमें आपकी जान नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए उस औरत की मौजूदगी बर्दाश्त करने की आप में ताकत चाहिए। इतना बोलकर आस्था अरमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी कि शायद अरमान अब उसकी बात मान लेगा। तभी अरमान ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ऐसा बोलकर अरमान वहां से चला गया था, लेकिन आस्था के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके लिए तो यही बात बहुत थी कि कम से कम अरमान ने उसकी बात का मान रखा था और वसुंधरा को इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन एक दिन रहने की इजाज़त दे दी थी। तब आस्था खुश हो गई थी और फटाफट से वो दादाजी के पास गई और दादाजी को भी उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। और कहीं ना कहीं दादाजी को भी लगा कि अगर इस तरह से वसुंधरा के यहाँ रहने पर अरमान के दिल का दर्द और उसकी नफरत थोड़ी बहुत कम होती है और वो सब भूलकर अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। इसीलिए दादाजी ने भी आस्था की हाँ में हाँ मिला दी थी। वहीं वसुंधरा को कुछ घंटे के बाद होश आ गया था और फिर आस्था ने उसे इस बात के बारे में बता दिया था कि वो इस शादी तक रुक सकती है। तो वसुंधरा हैरानी और शक भरी नजरों से आस्था की ओर देखते हुए बोली, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुमने अरमान को मेरे लिए मनाया है? तब आस्था ने अपनी गर्दन हामे हिलाते हुए बोलती हैं, जी हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार हो, नफरत या दर्द बिल्कुल ना रहे। जैसे ही आस्था ने ये बोला, वसुंधरा ने आस्था का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी और अचानक कुछ सोचकर अपने गले में पहना हुआ एक भारी भरकम डायमंड जड़ा सेट निकालकर उसने आस्था के हाथों में थमा दिया था और झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये मेरी प्यारी सी बहू के लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट, मुंह दिखाई का गिफ्ट। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये बोला, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वो इनकार करते हुए बोली, नहीं, हम आपसे इस तरह से गिफ्ट कैसे ले सकते हैं, प्लीज आप इसे अपने पास ही रखिए, ये तो काफी ज्यादा महंगा भी लग रहा है। तो वसुंधरा ने आस्था के गालों को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा जी, प्लीज ये तो आपको रखना ही होगा, प्लीज अगर आप ये नहीं रखेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आपने मुझे माफ नहीं किया है या फिर मुझे अपनाया नहीं है। अब आस्था वसुंधरा की बात सुनकर मजबूर हो गई थी और मजबूरी में उसने वो सेट ले लिया था, लेकिन उस सेट पर प्रियंका की नजरें टिक गई थी क्योंकि वो सेट उसने लास्ट टाइम मैगजीन में देखा था और जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी और वसुंधरा प्रियंका की शक्ल को ही देख रही थी। वहीं प्रियंका ने सोच लिया था कि वो सेट को आस्था से लेकर रहेगी। वेल, जल्दी ही वसुंधरा को एक कमरा दे दिया गया था और सभी इस वक्त अपने अपने कमरे में थे। वहीं सुमित काफी हद तक बेचैन था, पूरा दिन आज बिना राधिका को देखे ही गुजर गया था, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि आखिरकार मामला क्या है और क्या वाकई राधिका की तबीयत खराब है। अगर राधिका इतनी तबीयत खराब है तो क्या वो डॉक्टर को बुलाए ना बुलाए, लेकिन राधिका ने तो किसी तरह का कोई सिग्नल ही नहीं दिया था, तो सुमित पूरी तरह से हैरान था और इस वक्त अपने कमरे में था, लेकिन डेस्परेटली उसका दिल चाहता था कि वो राधिका को देखे, लेकिन जैसे जैसे खुद के मन को मारते हुए वो राधिका के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर
आस्था इस वक्त अरमान के साथ थी और उसके बाजू पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी। आस्था अरमान की चेस्ट पर सर रखकर सोने लगी, उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिला करता था। वहीं अरमान की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी, क्योंकि वसुंधरा रायचंद अगर एक छत के नीचे हो सकती है तो भला अरमान चैन की सांस कैसे ले सकता था। लेकिन फिलहाल आस्था की खुशी के लिए उसने वसुंधरा रायचंद को एक्सेप्ट किया था। वहीं जल्दी ही अगली सुबह हो गई थी। वसुंधरा जी पूरे मेंशन को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। पूरे मेंशन में रखा हुआ एक एक इम्पॉर्टेंट सामान उनकी आंखों से छुपा नहीं रहा था। तभी ज्यादा वसुंधरा जी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त अपने पूरे गैंग के साथ स्टडी रूम में जमा था। अरमान ने सभी को एक एक करके कुछ न कुछ सख्त इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया था और सभी के चेहरों पर अजीब अजीब से भाव थे। वहीं दूसरी ओर सारी गर्ल्स गैंग इस वक्त राधिका के कमरे में जमा थी, क्योंकि राधिका की एक्टिंग का आज लास्ट डे था और आज राधिका को वो करना था जो रौनक ने उसे कहा था, तो इसलिए राधिका थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। वो कह रही थी कि अगर सुमित जी ने उसकी बात मान ली तो तब क्या होगा, लेकिन रौनक ने उसे संतोषना देते हुए कहा, जैसा मैंने राधिका दीदी आपको कहा है आप प्लीज वैसा ही कीजिए और बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो हमने सोचा है वही होगा। अब रौनक की बात मानकर राधिका ने खुद को मोटिवेट किया। आस्था, रश्मि दोनों ही उसका साथ देने लगी हैं। तभी आस्था ने राधिका से कहा, मैं सुमित भैया को ठीक 10 मिनट बाद इस साइड भेजूंगी और आपको आगे का काम करना होगा। तब राधिका ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और वो आगे का काम कंटिन्यू करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान के इंस्ट्रक्शन के बाद सभी अपने अपने काम पर जुट गए थे। वहीं मारिया, जिसे आज दुल्हन बनना था, लेकिन अरमान का इंस्ट्रक्शन सुनकर वो उसे पर भी ध्यान देने लगी। नानी माँ जल्दी ही मारिया के पास शादी का जोड़ा, गहने, जूलन लेकर आई और बोली कि आपको ये सब पहनना है। एक बार को मारिया शादी का लहंगा और ज्वेलरी देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उसने कभी भी आज तक इस तरह से इतनी ज्यादा हैवी ड्रेस और ज्वेलरी कैरी नहीं की थी। लेकिन अब नानी माँ के जोर देने पर मारिया उन्हें मना नहीं कर पाती, क्योंकि मारिया की जिंदगी में प्यार के नाम पर शुरू से ही सिर्फ टाइगर था और रिश्तों के नाम पर अरमान था। लेकिन अब मारिया सभी को अपना समझने लगी थी और धीरे धीरे नानी माँ को वो बेहद पसंद करने लगी थी। आस्था, जो कि अपने कमरे में जा रही थी, उसने सुमित को आते हुए देख लिया था और रोकते हुए बोली, सुमित भैया क्या आप प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? अब जैसे आस्था ने मासूम सा फेस बनाकर ये कहा, सुमित तुरंत बोला, हाँ बोलो, क्या काम है, सब ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्योंकि सुमित अच्छे से जानता था कि सामने खड़ी हुई एक छोटी सी नाजुक सी लड़की, उसके जिगरी यार अरमान सिंघानिया की जान है, तो आस्था को कुछ ज्यादा ही स्पेशल अपीयरेंस मिला करता था। वेल, तभी आस्था ने बोला, अरे सुमित भैया एक छोटा सा काम है, वो ना राधिका दीदी के पास मेरा फोन छूट गया है, लेकिन अभी अरमान जी मुझे कमरे में बुला रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुननी होगी, तो क्या प्लीज आप उनसे फोन ला दोगे? अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, सुमित हैरान हो गया कि इतने छोटे से काम के लिए तो आस्था किसी को भी कह सकती थी, तो लेकिन उसने सुमित को ही क्यों बोला। लेकिन फिलहाल वो भी राधिका से मिलना चाहता था, क्योंकि राधिका पूरे 12 से 13 घंटे हो गए थे अभी तक सुमित के सामने नहीं आई थी, तो इसलिए सुमित आस्था की बात मानकर जल्दी ही अब राधिका के कमरे में जाने लगा। और जैसे ही वो कमरे में गया, उसने देखा कि राधिका अपने बैग पैक कर रही थी। राधिका को इस तरह से बैग पैक करता हुआ देखकर सुमित हैरान हो गया, क्योंकि उसकी तो आज राधिका के साथ शादी थी, तो इस तरह से राधिका का बैग पैक करने का क्या मतलब था। तभी सुमित आगे आते हुए बोला, क्या आस्था का फोन तुम्हारे पास है? तब राधिका ने तुरंत आस्था का फोन सुमित के हाथों में थमा दिया था। फिर सुमित तिरछी नजरों से राधिका के बैग को देख रहा था और फिर राधिका की ओर देखकर पूछता है, ये इस तरह से बैग पैक करने का क्या मतलब है? कहाँ जा रही हो तुम? तभी राधिका ने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब जैसे ही राधिका ने ये कहा, अचानक से सुमित को ऐसा लगा मानो कि उसके जिस्म पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। तब सुमित ने तुरंत राधिका के कंधों को कसकर पकड़ लिया, उसे झिंझोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ। अब जैसे ही सुमित ने एकदम से इस तरह का रिएक्शन दिया, राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, जिसकी वजह से सुमित राधिका के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं देख पाया। तभी राधिका की नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे पर रश्मि, आस्था के बाद रौनक मौजूद थी। रौनक के ऊपर आस्था का एक दूसरे के ऊपर सर रखा हुआ था और वो तीनों ही अंदर कमरे में झांक कर देख रही थी कि वो अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे ही राधिका ने उन तीनों को वहां देखा, वो अपनी आंखें उन तीनों को दिखाने लगी मानो कि वो उन्हें कहना चाह रही हूँ कि तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो तीनों तो वहां से जाने के मूड में ही नहीं थी। वो तो देखना चाहती थी कि जो प्लान उन्होंने बनाया था क्या वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है।